करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा, अल्हम्दुलिल्लाह व कफा, सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा, सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم। आज भी आयत नंबर 152 का अगला हिस्सा, और ये जो 10 कुरानी हुक्म हैं जो कि बाकी आसमानी किताबों में मौजूद, वो 10 कुरानी हुक्म जो कुरान में भी मौजूद, ये 10 कुरानी हुक्म में से 8वां हुक्म है, और ये हुक्म अदल व इंसाफ के हवाले से है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, व इज़ा क़ुल्तुम, और जब तुम कोई बात कहो, फ़अदिलू, तो फिर अदल से काम लो, इंसाफ से काम लो, वलौ काना ज़ा क़ुरबा, अगरचे मामला अपने करीबी रिश्तेदार ही का क्यों ना हो। तो दीन इस्लाम में अदल व इंसाफ का बहुत ज्यादा उसके ऊपर जोर दिया गया है। दर हकीकत दीन इस्लाम दीन इंसाफ ही है कि हर एक का हक अदा किया जाए, और जो फैसला करने वाला और जो इस पोजीशन में है कि उसके पास हक है फैसला करने का, उसको तो खास हुक्म मिला कि जी जो भी बात करो इंसाफ वाली करो, अपने करीबी रिश्तेदार को ना देखो। बेटे ने भी गलती की है तो बेटे के साथ इंसाफ का मामला ही किया जाए। तो दीन इस्लाम ने रिश्तेदारी देखने का इस हवाले से मना किया। देखिए, दीन इस्लाम में रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा करने का हुक्म दिया। हदीस तो यहां तक है कि जिसने रिश्तेदारों के साथ तोड़ा, अल्लाह ने उसके साथ तोड़ दिया, यानी अल्लाह से भी दूर हो जाएगा इंसान अगर रिश्तेदारों के साथ तोड़ेगा। बीवी बच्चों के साथ रिश्तेदारी खराब करता है, वालदैन के साथ अपनी ताल्लुक खराब करता है, बहन भाइयों के साथ, वैसे कबीले कुंबे के साथ रिश्तेदारी खराब करता है। अल्लाह ताला कहते हैं, मैं भी तेरे से तोड़ता हूँ, तू इनसे तोड़ता है, मैं तुझसे तोड़ता हूँ। तो इतना रिश्तेदारों के साथ अच्छाई करने का हुक्म है, मगर अदल व इंसाफ में रिश्तेदारी नहीं देखनी कि अगर बेटा भी चोरी करके आया है तो बाप कहे ये चोर ही है। तो ये नहीं कि जी इंसान जो है वो ना इंसाफी से काम ले, तो ना इंसाफी कर ली, अल्लाह को नाराज कर दिया। कभी कभी इंसान ये इंसाफ करने में बहुत ही मुश्किल मामला आता है, करीबी होता है, मोहब्बत करने वाला होता है, और वो ना इंसाफी का मुतालबा कर रहा होता है, यहां इंसान आके फंस जाता है। अल्लाह अकबर। मगर सच बात ये, कुरान का हुक्म ये है कि जब भी कोई बात कहो, व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू, हक बात कहो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला को इंसाफ पसंद है। हदीस पाक में आता है, ये जो अदल करने वाला बादशाह है ना, इंसाफ करने वाला बादशाह, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाते। इतना मकाम है। बादशाह का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया? बादशाह का लफ्ज इसलिए कि आम बंदा उसको बीवी बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने काम काज करने वालों के साथ, इनके साथ इंसाफ करना है। बादशाह जो होता है वो पूरे मुल्क के साथ इंसाफ करना होता है, हर तबके के साथ, हर दीन के लोग के साथ, हर इलाके वालों के साथ। तो आदिल बादशाह बनना आसान काम नहीं है, मगर अगर कोई है इतना साफ बंदा जिसने अदलो इंसाफ कायम किया, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इसके उठे हुए हाथ अल्लाह रद्द नहीं फरमाते, तो बड़ा काम है। अगर दिल के अंदर इंसाफ आ गया ना, वाकई ये नहीं देखा कि ये मेरा पसंदीदा है और ये मेरा पसंदीदा नहीं है, या इसने मेरे साथ अच्छा किया है तो इसके बारे में मैं यूं करूं, इंसाफ को देखा, तो ऐसे बंदे की अल्लाह के यहां बड़ी कद्रो कीमत है। एक हदीस में तो ये आया, ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन 7 लोगों को अर्श का साया मिलेगा, जब कोई और साया नहीं होगा, और उसमें से एक वो शख्स है जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, आदिल इमाम है, अदल और इंसाफ करता है और इमाम है। इमाम से मुराद मुफस्सिरीन ने मुहद्दिसीन ने ये लिया कि जो कोई भी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, अगर वो अपने घर में है तो इमाम घर का जो सरबराह है वो है, अगर वो अपनी ऑफिस में है तो जो ऑफिस का जो मैनेजर है वो है। तो जिस किसी ने अदल और इंसाफ से काम लिया, अल्लाह अकबर, कयामत के दिन अरबों लोग इसको देख के हैरान होंगे कि ये कौन सा नेक आदमी है कि अल्लाह इसका इतना जबरदस्त इस्तकबाल फरमा रहे हैं, ये कयामत के दिन भी अल्लाह का मेहमान है, लाखों करोड़ों धूप में सड़ रहे हैं, ये अल्लाह के अर्श के नीचे अल्लाह का मेहमान बना हुआ है। तो इसका अमल क्या है, इसने इंसाफ से काम लिया। आज इंसाफ करने में कोताही है, हम इंसाफ से काम नहीं लेते, ख्वाहिशात से काम लेते हैं। तो सच्ची बात यह है कि जो इंसाफ करता है वही अल्लाह वाला है। जिसने इंसाफ किया इसका मतलब है इसने अपनी ख्वाहिशात को दबा दिया है। इसीलिए दीन इस्लाम ने इंसाफ के बारे में बड़ा साफ साफ मामला रखा। मशहूर वाकया है, हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का घर मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ मुत्तसिल था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को दौरे खिलाफत है, बारिश हुई, हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास के घर के परनाले में से पानी गिरा और मस्जिद में आ गया, नमाजियों को तकलीफ हुई। हजरत उमर ने फरमाया कि इनके घर का परनाला निकाल दिया जाए ताकि पानी मस्जिद में ना आए। अब हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास वो अपने घर में थे नहीं, कहीं सफर पे थे, बाहर थे, परनाला हजरत उमर क्योंकि अमीरुल मोमिनीन उस वक्त खलीफा वक्त वो थे, उनके हुक्म पे निकाल दिया गया। अब्दुल्ला इबन अब्बास जब वापस आए उन्होंने देखा मेरे घर का परनाला निकला है, उन्होंने पूछा जी किसने निकाला, उन्होंने कहा जी अमीरुल मोमिनीन ने निकाला है। बड़े नाराज हुए कि जी मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर की किसी चीज को, चाहे वो अमीरुल मोमिनीन ही क्यों ना हो, उन्होंने क्यों निकाला। तो केस किया उन्होंने अमीरुल मोमिनीन पे। उस वक्त के काजी जो थे वो हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम के बड़े मशहूर सहाबी, वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के हुकूमत के काजी थे, जज थे। तो उनकी अदालत में केस हुआ, और केस किसके खिलाफ है, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने काजी से कहा कि जी मेरे घर का परनाला लगा हुआ है और अमीरुल मोमिनीन ने मेरी इजाजत के बगैर परनाला निकाल दिया। काजी ने हजरत उमर से पूछा कि जी आप अपनी डिफेंस में क्या फरमाएंगे, उन्होंने कहा मैंने इसलिए निकाला है कि ये नुकसान दे रहा था मस्जिद को, इसका पानी मस्जिद नबी में आ रहा था और नमाजियों को तंगी हो रही थी, इसलिए मैंने निकाल दिया। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि ये वो परनाला है जो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से मेरे घर की इस दीवार में लगाया था, तो इस परनाले को कोई कैसे निकाल सकता है। उबई इब्ने काब रजी अल्लाह उन्होंने अपनी फाइनल रूलिंग दी, अपना फैसला सुनाया, और फैसला क्या, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने ये पर नाला लगाया है, किसी को भी निकालने की इजाजत नहीं है, और हुक्म ये दिया कि हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन ये झुकेंगे और इनकी कमर पे इब्ने अब्बास वापस खड़े होके ये परनाला वहीं पे लगा दें जहां नबी अलैहिस्सलाम ने लगाया था। अल्लाह अकबर। तो दीन इस्लाम में वक्त का बादशाह, वक्त का अमीरुल मोमिनीन भी कानून से बालातर नहीं, उसके मामले में भी इंसाफ ही देखा जाता। तो अल्लाह ताला ने पसंद किया, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई करीबी हो, कोई दूर का हो, इंसाफ किया जाए। तो दीन इस्लाम ने इंसाफ को पसंद किया। मशहूर वाकया है, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर केस किया एक यहूदी ने, मुसलमान जज, और केस किस पर है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पर, अमीरुल मोमिनीन थे और अल्लाह के नबी ने उनके बारे में फजाइल ही फजाइल बयान किए, मगर केस जब गया तो जज उस वक्त जो मुसलमान थे उनको महसूस हुआ कि जी ये यहूदी के मामले, ये यहूदी के फेवर में केस है। उसने जरा भी इस चीज का ख्याल नहीं किया कि हजरत अली तो हमारे अपने हैं, इतने बड़े मकाम पे हैं। उन्होंने इंसाफ को देखा और फैसला यहूदी के हक में कर दिया। अल्लाह अकबर। तो दीन इस्लाम ने अदलो इंसाफ का हुक्म दिया, जिसने अदलो इंसाफ कर लिया वही अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। और अगर दिल में इंसाफ नहीं है ना, ना इंसाफी, बस ख्वाहिशात पे फैसले चल रहे हैं, इंसाफ पे नहीं चल रहे, तो फिर जितने सजदे कर ले और जितनी तिलावत कर ले और जितनी नफलें पढ़ ले, अल्लाह का मुकर्रब नहीं हो सकता। ये अल्लाह ने फैसला सुना दिया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअ्तदीन, कि बेशक अल्लाह पसंद नहीं फरमाते ज्यादती करने वालों को, बे इंसाफी करने वालों को। सच्ची बात तो ये है, बे इंसाफी करने वाला वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता है, अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा होता, अल्लाह की निगाह से गिर रहा होता है। वो समझ रहा होता है कि बस ठीक है ना, मसला कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा, मैंने बेइंसाफी कर ली, मगर मेरे पास ताकत इतनी है कि मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो सच्ची बात यह है कि उसे ये नहीं पता कि वो अल्लाह की निगाह में गिर चुका है, उसकी दुनिया में भी अल्लाह ने बेबरकती लानी है और अल्लाह उसको आखिरत में भी बहुत नुकसान देंगे। हदीस पाक में आता है कि जिसने किसी को नुकसान दिया अल्लाह उसको नुकसान देंगे, जिसने किसी को मुश्किल में डाला अल्लाह उसको मुश्किल में डाले। तो ना इंसाफी करने वाला समझ रहा है मैंने बड़ा कमाल कर दिया, बहुत ही मैंने जहानत का मुजाहरा किया कि जिसका हक था उसको हक नहीं दिया, मैंने बेइंसाफी कर ली और दूसरे को पता ना चला, या मैंने बेइंसाफी की और दूसरे के अंदर हिम्मत नहीं थी मेरे फैसले को रद्द करने की। बिल्कुल सही है, आपने सही सोचा, मगर एक सोच अल्लाह की भी है, अल्लाह ताला खूब टिका के दुनिया में भी बदला लेंगे, आखिरत में भी बदला लेंगे। तो इसलिए ना इंसाफी करने वाला किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा होता है। नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी आए, उन्होंने कहा मेरा नौकर है, चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, कामों में कोताही भी करता है, तो फिर मैं उसको मारता हूं, तो अब आप बताएं सही करता हूं या गलत करता हूं। अब ये तो सहाबी अल्लाह के नबी के करीबी थे और उनका जो गुलाम था वो तो अल्लाह के नबी, उनको पता भी नहीं कि वो कौन है, तो ज्यादा करीबी तो यही थे, मगर अल्लाह के नबी ने कुर्बत नहीं देखी, साफ साफ बात की कि अल्लाह के बंदे हिसाब होगा, तेरी ज्यादतियों को भी अल्लाह ताला सामने रखेंगे, इसकी ज्यादतियों को भी सामने रखेंगे, और जिसकी ज्यादतियां ज्यादा होंगी कयामत के दिन, उस जिसकी ज्यादतियां ज्यादा होंगी वो परेशानी में होगा, दूसरे को मौका दिया जाएगा कि इसकी नेकियों में से नेकियां लेना चाहे तो ले ले, جب یہ بات اس صحابی نے سنی چیخ ماری اور مار کے نیچے بے ہوش ہو گئے, اور جب ہوش آیا تو کہا اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے گا میں نے اس اپنے ملازم کو اس غلام کو آزاد کر دیا ہے. تو یہ پکی بات ہے, دین اسلام بے انصافی کو پسند نہیں کرتا, دین اسلام دین انصاف ہے, ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم. تو اگر نیک بننا ہے, ہم چاہتے ہیں ہم نیک بنے, ایک صفت حاصل کر لیں, انصاف کی صفت حاصل کر لیں. اور یہ انصاف کی صفت جو ہے یہ اللہ والوں کی صحبت میں حاصل ہوتا ہے, یہ قرآن سمجھنے سے, دینی محفلوں میں آنے جانے سے حاصل ہوتا ہے. جس کو یہ انصاف والا دل مل گیا, یہ دلیل ہے کہ یہ بندہ نیک ہے, اس کو دل کی صفائی نصیب ہو گئی ہے, دل کی پاکی نصیب ہو گئی ہے. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی سوائے سنورے ہوئے دل کے. تو جس کے اندر انصاف آ گیا, سمجھ لیں اس کا دل سنور گیا. مشائخ کے ہاں جو لوگ اپنی محنت کرتے ہیں, ذکر اذکار معمولات کرتے ہیں, شیخ کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں, ان کی ڈانٹ ڈپٹ کھاتے ہیں, تو کچھ عرصے بعد جب ان کی دل کی صفائی شیخ پر واضح ہو جاتی ہے تو شیخ ایسے اپنے سالکین کو, اپنے متعلقین کو اجازت و خلافت دیتے ہیں کہ اب آپ کو دل کی وہ صفائی مل گئی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی دین سکھائیں, ذکر معمولات سکھائیں, پاکی دل اچھے اخلاق سکھائیں. تو یہ اجازت و خلافت کا سلسلہ شروع اسلام سے ابھی تک چلتا آ رہا ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک صاحب کو اجازت و خلافت دی کہ آپ کو محسوس ہوا کہ یہ اب بہت محنت کر چکے ہیں اور بہت اللہ سے ان کا تعلق ہو گیا ہے, دل کی صفائی نصیب ہو گئی ہے, تو ایک صاحب کو حضرت نے اجازت دی. کچھ عرصے بعد وہ اپنے علاقے سے حضرت کے پاس آئے ملاقات کے لیے, بیٹے کو بھی ساتھ لے کے آئے. تو حضرت سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کیا حال ہے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہاں سے آ رہا ہوں, انہوں نے کہا جی اپنے شہر سے ریل گاڑی کا سفر کر کے آ رہا ہوں, ٹرین میں آیا ہوں. حضرت نے پوچھا کہ بھائی ٹرین کا ٹکٹ خریدا تھا نہیں خریدا؟ اس نے کہا حضرت میں نے اپنا تو ٹکٹ خریدا, یہ جو میرے ساتھ بیٹا ہے یہ ویسے تو 12 سال سے بڑی عمر کا ہے مگر دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے, تو میں نے ٹرین ماسٹر سے کہا کہ جی یہ 12 سال سے کم عمر ہے, تو 12 سال سے کم عمر کی ٹکٹ نہیں ہوتی, تو اس کی ٹکٹ بچ گئی. اب انہوں نے تو اس انداز سے کہا کہ بڑا یہ اچھا ہو گیا کہ ٹکٹ بچ گئی, کہ بچہ دیکھنے میں 12 سال سے کم عمر کا لگتا ہے, مگر حضرت نے محسوس کیا کہ اس کے اندر انصاف نہیں ہے, ابھی دل کی صفائی نہیں ملی اور میں نے تو اس کو اجازت و خلافت دے دی. حضرت نے اسی وقت کہا کہ بھائی اگر تو اتنا بھی انصاف نہیں کر سکتا, صحیح صحیح ٹکٹ بھی نہیں دے سکتا, تو ابھی تو اس اجازت اور خلافت کے قابل نہیں, تیری اجازت اور خلافت واپس لے لی جاتی ہے. تو یہ عدل و انصاف, یہ دل کے صاف ہونے کی دلیل ہے. تو قرآنی حکم اور بڑا حکم, وَإِذَا قُلْتُمْ, جب بھی بات کرو, فَعَدِلُوا, انصاف والی بات کرو, عدل والی بات کرو, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اگرچہ وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. آیت کا ترجمہ یہ آج اسے ایک مرتبہ پھر کر دیتا ہے, وَإِذَا قُلْتُمْ, جب بھی بات کرو, فَعَدِلُوا, تو پھر انصاف کی بات کرو, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اگرچہ معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا۔ ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، تیرے قدم ہو اس کی راہ، تیرے قدم ہو اس کی راہ، تیرا دل ہو اس کا گھر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔